ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सौवसाहूणं साहूवर्षायिरिये अरहन्ते वन्दिऊणसि देवी जे पञ्चलोगवाले वोच्छं बन्धस्स सामित्तम। यह श्री वीर सेनाचार्य रचित धौला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये आठवीं पुस्तक जो तृतीय खंड है, उसमें बंध स्वामित्व विचय की बात हमारी चल रही है। इस पुस्तक में हम 54 पृष्ठ पर आ गए, 54। कल हम देख रहे थे 22 नंबर के सूत्र में, 52 पृष्ठ पर हमने देखा था, दो प्रकृतियों की बात उन्होंने उठाई थी। कौन सी दो? पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध। उनके बंधक कौन है? तो पहले गुणस्थान से लेकर नौवे गुणस्थान तक, ये पहले बताया। फिर नौवे गुणस्थान में कहाँ तक, तो उसका संख्यात भाग जाने पर शेष काल में, शेष यानी जब अंतरकरण होता है, अंतरकरण के पश्चात जितना काल शेष रहा, उसमें से संख्यात बहुभाग जाने पर इनका बंध विच्छेद होता है, उसके संबंध में चर्चा चल रही थी। तो क्या वो स्वोदय से होता है, क्या परोदय से होता है, ऐसी चर्चा चल रही थी। तो संसार अवस्था में स्वोदय परोदय दोनों से बनते हैं, परंतु यहाँ बात चल रही ना कि स्वोदय से ही जो अंतिम उसका बंध है, तो स्वोदय से ही है, यानी बंधते समय उसका उदय भले अन्य का हो, पर इसके आगे क्रोध का बंध नहीं होता है। यानी यहाँ बंध विच्छेद क्रोध का हो जाता है, तो बाद में ये क्रोध प्रकृति नहीं बनती है। यहाँ जो लिमिट बताई है, यहाँ से आगे संज्वलन क्रोध का बंध नहीं होगा। यहाँ पर उदय क्रोध का हो, मान का, लोभ का या माया का, जिस किसी का हो, फिर भी क्रोध का बंध चल रहा है, इसके बाद क्रोध का बंध नहीं होगा। क्रोध का बंध हो रहा है, यानी चारों को बंध हो रहा है, जब तक यहाँ इस पोजिशन तक, बाद में तीन का ही बंद होगा, क्रोध का बंद मिल गया है, उदय भी नहीं होगा और बंद भी नहीं होगा। इसलिए इस पॉइंट पर उदय और बंद एक साथ मिटते, ये बात कही उन्होंने पुरुष वेद के बारे में भी और संज्वलन क्रोध के बारे में भी। अब यहाँ हम 54 पृष्ठ पर आ गए हैं, तो उनके प्रत्यय ने कौन से प्रत्ययों से ये बनते हैं, उसकी चर्चा है। देखो ये जहाँ नया पैराग्राफ शुरू होता है वहां से पढ़ेंगे अभी हम। इन दोनों प्रकृतियों के, यानी पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध, प्रत्ययों का प्ररूपण करने पर मूल यानी मूल प्रत्यय, उत्तर यानी उत्तर प्रत्यय तथा नाना व एक समय संबंधी प्रत्ययों के भेद से पृथक पृथक जो प्रत्यय जिन गुणस्थानों के कहे गए हैं, वे गुणस्थान उन प्रत्ययों से इन प्रकृतियों को बांधते। हमने पहले गुणस्थान से लेकर ऊपर तक सभी के मूल प्रत्यय कितने हैं, उत्तर प्रत्यय कितने हैं नाना समयों के, और एक समय में कितने हो सकते हैं, उसकी बात की थी। वैसे वे ही प्रत्यय इन दो प्रकृतियों के बंध में भी कारणभूत होंगे। अतः इनकी पृथक प्रत्यय प्ररूपणा नहीं है, क्योंकि उनसे यहाँ कोई भेद नहीं पाया जाता। यहाँ दूसरी पद्धति से कह रहे गए अभी, यानी अभी जो पुरुष वेद का बंध मिथ्या दृष्टिकोण स्थान में होता है तो कितने प्रत्ययों से होता है, तो हमने देखा था वहाँ 55 होते हैं और दूसरे में 50 होते हैं हर एक गुणस्थान के जो हमने प्रत्यय देखे थे। अब ये दूसरी पद्धति से बता रहे अथवा कहकर, अथवा पुरुष वेदोदय प्रत्यय है, पुरुष वेद का उदय उसके कारण ये नया वेद बन रहा है, ये उसका प्रत्यय है, क्योंकि अपगत वेदियों में उसका बंध नहीं पाया जाता। यानी वेद का उदय उसका प्रत्यय है, वेद के उदय में वेद बन रहा है, अपगत वेद होता है तब वेद नहीं बनता, पुरुष वेद नहीं बनता। वो अकेला वेदोदय क्यों नहीं कहा, पुरुष वेदोदय क्यों कहा? देखो ऊपर लिखा है, ऊपर के पैराग्राफ में तीसरी लाइन, अथवा पुरुष वेदो वेदोदय पच्चो, पुरुष वेद वेदोदय प्रत्यय है, यानी पुरुष वेद के लिए वेदोदय प्रत्यय, अकेला वेदोदय लिखना, नहीं तो पुरुष वेद के उदय में ही वेद पुरुष वेद बनता है ऐसा अर्थ होता है। ये जो भाषांतर किया है ना उसमें एक शब्द लिखा रह गया, देखो ऊपर क्या लिखा, पुरुष वेदो वेदोदय पच्चो, पुरुष वेद जो है वो वेद के उदय में बंधने वाला प्रत्यय है, जहाँ वेद का उदय नहीं है वहाँ नया को वेद भी नहीं बनता है। पहले गुणस्थान में भी तीन वेद बनते हैं, वहाँ भी कोई ना कोई वेद का उदय चल ही रहा है ना। दूसरे गुणस्थान में दो वेद में से एक वेद बनता है, पुरुष या स्त्री वेद, वहाँ भी उदय तो तीनों में से किसी का चल रहा है। तीसरे गुणस्थान के आगे एक पुरुष वेद ही बनता है नववे तक, वहाँ भी वेद का उदय तो है, कोई ना कोई वेद का उदय है, जहाँ तक वेद का उदय है वहीं तक बंध होता है, जब वेद का उदय मिट जाता है वहाँ वेद का बंध भी नहीं होता। इसलिए यहाँ ऐसा लिखना चाहिए, अथवा पुरुष वेद वेदोदय प्रत्यय है, ख्याल है ना। हाँ हाँ, उदय हर समय चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, जहाँ तक उदय है वहीं तक बंद है, नहीं नहीं उदय लास्ट तक नहीं है। नवे गुणस्थान के बहुत सारे भाग किए हमने, तो पहले भाग, पांच भाग करेंगे अभी हम, तो पहले भाग तक उसका उदय है और बंद भी है, आगे उदय भी नहीं है और बंद भी नहीं है। वेद प्रकृति जो पहले बंधी हुई है उसका वहाँ उदय चल रहा है, वैसे उसके फलरूप ऐसा कोई कार्य या वहाँ ऐसे भाव जीव के नहीं पाए जाते, जो केवलीगम में जो कुछ है वो पाए जाएंगे, परंतु ऐसा कोई उसके जैसे भी छोटा जन्मजात बालक है उसके भी वेद का उदय तो निरंतर चल रहा है किसी न किसी, तो उसका क्या हमें कार्य दिख रहा है। मुनिराज जो है पांचवें गुणस्थान में ही सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, तो उसके बाद तो ऐसे कोई उनके विचारों में आचारों में ऐसा कोई है ही नहीं है कि जो वेद का जो हम ऑर्डिनरीली कार्य देखते हैं कहते हैं है, उसका उदय है इतना ही बताते हैं वेद कर्म का।
यहाँ तो जीव के परिणामों की बात तो केवलीगम्य है, सुनना, जीव की भाव की बात है वो तो केवलीगम्य है जो मुनियों की अपेक्षा से हम कह रहे हैं, लेकिन द्रव्य वेद यानी कर्मों का उदय है वह भी केवली जाने और अवधि ज्ञानी जाने, लेकिन वहाँ शारीरिक जो कोई फेरफार हमें दिखाई देता है वो उनमें कुछ नहीं होगा, और वहाँ तो बात जो चल रही वो कर्म का उदय है उसकी अपेक्षा से बात है कि वहाँ पुरुष वेद है स्त्री वेद है, ये कर्म जो पहले बंधे हुए थे उसके उदय की बात है, बाकी भाव वेद की बात मत करना और शारीरिक अवस्था की भी बात सोचना ही मत।
हाँ हाँ कुछ तीनों से ऐसा कुछ उसके वहाँ है ही नहीं। देखो हाँ अभी मैंने बोला ना, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में भी वेद के उदय में वेद बन रहा है, अन्य वहाँ मिथ्यात्व का भी उदय चल रहा है, अन्य भी अनंतानुबंधी का भी है, परंतु अथवा कह के ये दूसरी भी बात कही नहीं उन्होंने, वेद का उदय है तब तक वेद का बंध है। पहले तो बता दिए सभी प्रत्यय कार्यकारी है, और फिर अथवा कहकर दूसरी भी अपेक्षा बता दी, क्योंकि यदि वेद के उदय से वेद बनता इतना ही ले लेते तो मिथ्यात्व गुणस्थान में तीनों ही वेद बनते हैं और ऊपर नहीं बनते, ऐसा क्यों, ऐसा भी प्रश्न उठेगा ना। तो वहां वो मिथ्यात्व कुछ ना कुछ कार्यकारी है वहां पर, ख्याल है। तो वो स्त्री नपुंसक वेद का बंध जो है वो पहले में ही है, आगे है ही नहीं है, क्योंकि वो मिथ्यात्व संबंधी है, वो तो उसमें वो प्रत्येक कार्यकारी होता है। इस तरह अथवा कहकर दोनों ही अपेक्षा उन्होंने बता दी है। यहाँ क्या वाक्य लिखा है, अथवा पुरुष वेद, आपने करेक्शन किया ना उसको, पुरुष वेद वेदोदय प्रत्यय है, यानी वेद के उदय में ही बनने वाला ये पुरुष वेद है, क्योंकि अपगत वेदियों में, अपगत वेदी यानी जिनके वेद का उदय मिट गया है उसको अपगत वेदी कहते हैं, भले वो उपशम श्रेणी वाला हो या क्षपक श्रेणी वाला हो, जहाँ वेद का उदय मिट जाता है उसको अपगत, अपगत यानी गया है जिसका, निकल गया है वो अपगत वेदी, उसमें उनका बंध नहीं पाया जाता। अब क्रोध की बात करेंगे, संज्वलन क्रोध का बंध, संज्वलन कषाय के तीव्र अनुभाग उदय निमित्तक है। ओहो, क्योंकि उपशम श्रेणी में क्रोध के अंतिम अनुभाग अनुभागोदक दय की चाहिए, ऊपर लिखा ना क्रोध चरिमाणुभागो दयादो अंतिम अनुभागो दय की, यह रह गया अंतिम अनुभागे ने लास्ट लास्ट अपेक्षा, अथवा पुरुष वेदोदय प्रत्यय है, क्योंकि अपगत वेदियों में उसका बंध नहीं पाया जाता। हाँ, पुरुष वेद पहले चला जाता है उसके बाद, यह तो एक साथ लिखा उन्होंने, जो कोई दूसरी अपेक्षा है, दूसरी दूसरा उपदेश होगा ऐसा। यहाँ क्या कहते हैं देखो, फिर इसको पढ़ते हैं, संज्वलन क्रोध का बंध, संज्वलन कषाय के तीव्र अनुभाग उदय निमित्तक है, यानी संज्वलन का तीव्र अनुभाग उदय, क्योंकि इसके आगे अभी क्रोध का बंध मिट जाता है। अभी उसका कारण बताते, क्योंकि उपशम श्रेणी में क्रोध के अंतिम अनुभाग उदय की अपेक्षा, या अनुभाग उदय अपेक्षा क्यों कहा, यानी जहां क्रोध कर्म जो पड़ा है अंदर, वो क्रोध क्रोध कर्म से जब तक उदय में आ रहा है तो उसको अनुभाग उदय कहेंगे। परमाणु तो अंदर है, वो तो मान रूप होकर भी उदय में आ सकते हैं, तो प्रदेश उदय तो चल रहा है उनका, है ना, वही अन्य रूप से होकर चले आएंगे, तो इसलिए यहाँ अनुभाग उदय, जो क्रोध क्रोध रूप से जब, और उसको भी तीव्र अनुभाग उदय कहा, क्योंकि वहाँ भी वो श्रेणी में तो बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, वहाँ उसके जो तीव्र अनुभाग है वो अत्यंत मंद मंद है, उसकी कृष्टि वगैरह होती है, तो उसकी चर्चा नहीं करने के लिए तीव्र अनुभाग उदय लिखा केवल, और वो भी जहाँ ये बंध की विच्छित्ति हो रही वहाँ की बात है, बाकी तो चारों प्रकार के यानी अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संज्वलन सभी बंद रहे ना, पहले गुणस्थान से लेकर जहाँ तक ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में वो पहली पहली चौकड़ी मिट जाएगी। अब यहाँ तो अकेले संज्वलन, जब बंद विच्छित्ति होती है तो संज्वलन क्रोध का उदय है और वहाँ संज्वलन क्रोध का बंद भी है, इसके आगे उसका उदय भी मिटेगा और बंद भी मिटेगा, इसलिए अनुभाग उदय की बात की उन्होंने। आगे लिखा ऊपर क्या लिखते देखो, अवगत वेदेश, अच्छा अच्छा हाँ, ये कुछ गलती है, कोद संजलनो मैं ऊपर का पढ़ रही हूँ, चौथी लाइन, संजलन कषायस्य तीव्रानुभागोदय पच्छो। क्रोध के तीव्र अनुभाग नहीं कहा, संज्वलन कषाय के तीव्र अनुभाग उदय के निमित्त है ऐसा कहा। संज्वलन कषाय का तीव्र अनुभाग उदय वहाँ है। आगे उसका कारण बताते, वो समसेढ़िमी क्रोध चरिमाणु भागोदया दो अनंत गुण हीने न। ये कुछ गड़बड़ी हो गई है। अनंत गुणहीने न मानानुभागोदय न कोद संजलनस बंधानुवलंभा दो। ये पुरुष वेदोदय प्रत्यय है, ये जो है ना वो ऊपर नीचे हो गया सब। ये जो लिखा ना, क्योंकि अपगत वेदियों में उसका बंध नहीं है, वो पुरुष वेदोदय प्रत्यय है, वो वाक्य यहाँ रिपीट हो गया है। यानी ये समझ में है, पुरुष वेदोदय क्रोध के लिए वो प्रत्यय नहीं है, और ना ही दोनों एक साथ अपगत वेदियों में क्रोध का बंधन है, ये वाक्य भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब छपा है तब ये रिपीटेशन हुआ है वाक्य का, ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ी हो गई। हम ऊपर जो प्राकृत में लिखे है उसके अनुसार फिर पढ़ेंगे और फिर उसका अर्थ करेंगे। देखो, अच्छा, हाँ, केवल वो नीचे के ये लिखा ना, क्योंकि उपशम श्रेणी में क्रोध के अंतिम अनुभागोदय की अपेक्षा अनंत गुणहीन संज्वलन मान के अनुभाग उदय से संज्वलन क्रोध का बंध नहीं पाया जाता। ये बराबर है। अब बीच में क्या निकालने वो मैं बताती हूँ। वो रिपीट वाक्य हुआ ना बीच का, यानी क्योंकि उपशम श्रेणी में क्रोध के अंतिम अनुभागोदय की अपेक्षा, ये अथवा निकाल देना, अथवा पुरुष वेदोदय प्रत्यय है निकालो, क्योंकि अपगत वेदियों में उसका बंध नहीं पाया जाता ये भी निकालो, और आगे की बात तो लिखी हुई है ऊपर, संज्वलन क्रोध का बंध संज्वलन कषाय के तीव्र अनुभागोदय निमित्त है। आगे भी क्योंकि अपेक्षा तक सब निकाल देना। बताती हाँ सब, देखो तीन लाइन चार लाइन तक निकालना है, अथवा से लेकर अपेक्षा तक। देखो मैं अभी छठी लाइन पढ़ रही हूँ, क्योंकि मिला ना? उपशम श्रेणी में क्रोध के अंतिम अनुभागोदय की अपेक्षा, इसके आगे ब्रैकेट करना और कहाँ तक निकालना है वो फिर मैं बताऊंगी, बाद में काटना। अभी इसके नीचे नीचे से दूसरी लाइन में आ जाओ, भागोदय की अपेक्षा जो है वहाँ, उसके बाद ब्रैकेट बंद करो। ऊपर आए थे ना अनुभागोदय की अपेक्षा, वही यहाँ रिपीट हुआ है। यानी चार लाइन में हमने बीच वाली दो लाइन संपूर्ण, हाँ, और ऊपर अथवा पुरुष वेदोदय और नीचे भागोदय की अपेक्षा, यहाँ तक ये सब निकालना है। अब आगे फिर पढ़ती हूँ मैं, अब ऊपर से मैं नीचे कंटिन्यूटी लूंगी। क्योंकि उपशम श्रेणी में क्रोध के अंतिम अनुभागोदय की अपेक्षा अनंत गुणहीन, हाँ नीचे से दूसरे, संज्वलन मान के अनुभागोदय से संज्वलन क्रोध का बंध नहीं पाया जाता। अब फिर से दोबारा मैं इसको समझाऊंगी। पहले तो संज्वलन क्रोध का उदय चल रहा है, उसके बाद अभी उसका उदय और बंध दोनों मिट गए, उसके बाद क्या है, मान का उदय है। तो संज्वलन मान का जो अनुभाग उदय है वहां पर वो कितना है, तो जहां पहले जितना था संज्वलन कषाय का ही था, अकेले क्रोध का ऐसा नहीं था, क्योंकि उदय क्रोध मान माया लोभ किसी का भी हो सकता है। हम समझ लेते पहले भी मान का था और बाद में भी मान का ही है, तो पहले तीव्र उदय था तब तक तो क्रोध बनता था, अभी वो उदय अनंत गुणाहीन हो गया, अभी क्रोध नहीं बनेगा, मान माया लोभ बनेंगे। क्योंकि नवे गुण स्थान के आगे आगे चले जाते हैं तो विशुद्धि बहुत अनंत गुना बढ़ती है, और अनुभाग जो पहले बंदा है वो उदय में जो आ रहा है वो अनंत गुणाहीन होकर उदय में आता है। तो उतने अनुभाग से पहले क्या पोजीशन थी, मान का उदय हो या लोक का किसी का, वो चारों ही बनते थे। अभी स्टार्टिंग में जहाँ क्रोध का बंद है, यानी क्रोध मान माया लोभ चारों का बंद है, वहाँ संजोलन कषाय कोई भी क्यों ना हो उसका तीव्र अनुभाग का उदय है। तभी क्रोध मान माया लोभ चारों बनते थे। अब क्या हुआ, अब वो अनुभाग का उदय मंद हुआ तो अभी उससे क्रोध नहीं बन सकता है, उससे मान माया और लोभ बन देगी। आगे चलकर वो अनुभाग और मंद होते चला जाएगा तब उस पोजीशन माया और लोभ दो ही बंधेंगे, मान का भी बंध रुक जाएगा। फिर आगे चलकर और अनुभाग हीन हो जाएगा तो अकेला लोभ बंधेगा, माया का भी बंध रुक जाएगा। यानी पुराने कर्मों का उदय किस रूप में, किस अनुभाग में उसका उदय होता है, निमित्त वैसा बनता है ना। यहाँ जीव के परिणाम भी अत्यंत मंद हो रहे हैं और वहाँ कर्मों का उदय में आने वाले कर्मों का अनुभाग भी घटता है। सत्ता में पड़ा तो बहुत अनुभाग वाला था परंतु भी मंद, ऊपर के गुणस्थान में अत्यंत मंद 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 होकर उदय में आता है। ये समझ में आए कि फिर पढ़ो इसको, देखो एक बार फिर पढ़े आप। हाँ, पहले क्रोध का बंध रुक गया, इसके आगे क्रोध का बंध भी नहीं उदय भी नहीं है। फिर मान का बंध रुक गया, परंतु जहां मान का बंध था वहां मान माया लोभ में से किसी का भी उदय हो सकता था। जहां तक क्रोध का बंध हो रहा था, क्रोध नहीं अकेले क्रोध नहीं, क्रोध मान माया लोभ, हाँ देखो आपका प्रश्न है यहाँ वो नष्ट हुआ कि दूसरे में कन्वर्ट हो गया है, तो उपशम श्रेणी में वो उपशमित हो गया है, अंदर पड़ा है और उपशमित हुआ है, और क्षपक श्रेणी में वो सारा का सारा मान रूप कन्वर्ट हो गया है। अकेला अकेले संज्वलन की बात नहीं, सत्ता में तो क्या क्या पड़ा है, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण भी सत्ता में पड़ा है, वो भी सारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अन्य रूप हो जाता है, मान रूप हो जाता है। फिर मान रूप से उदय हो चले जाएगा, वो मान है वो माया में कन्वर्ट होगा, माया है वो लोभ में, अंतिम सारे जो जितने परमाणु की संख्या है वो सारे लोभ रूप, पूरा मोहनीय का द्रव्य लोभ रूप हो जाएगा। 25 कषायों का जितना सारा द्रव्य वो कन्वर्ट होकर ही उसमें रूप हो जाते हैं। भले निर्जरा हो भी जाए तो भी मेजॉरिटी अंदर ही पड़ा रहता है, असंख्यात बहुभाग अंदर सारा पड़ा रहता है। फिर से दोबारा पढ़ू, कहाँ काटना वो समझ में आया? हाँ देखो, क्योंकि नीचे से पांचवी लाइन, नहीं चौथी लाइन, पांचवी लाइन, पांचवी में, क्योंकि उपशम श्रेणी में क्रोध के अंतिम अनुभागोदय की अपेक्षा, अब नीचे से दूसरी लाइन, अनंत गुणहीन संज्वलन मान के अनुभागोदय से संज्वलन क्रोध का बंध नहीं पाया जाता। ये अनुभाग जो है संज्वलन कषायों का क्रमशः अनंत गुणा, प्रति समय में अनंत गुणाहीन, अभी अनंत किसको कहना, और एक एक समय अनंतवा भाग अनंतवा भाग अनंतवा भाग रह जाता है। तो एक पोजीशन ऐसी होती कि अभी इसके आगे क्रोध का बंध नहीं होगा, फिर कहेंगे मान का बंध नहीं होगा। तो देखो, मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्य दृष्टि, अभी किस गति संयुक्त है इस प्रश्न का जवाब चल रहा है। नरक गति के बिना पुरुष वेद को तीन गतियों से संयुक्त बांधते हैं। जब हमने सामान्य अन्य बंध की बात की थी, जैसे ज्ञानावरण का बंध चल रहा है, तो उसमें मिथ्या दृष्टि जीव कितने गतियों से संयुक्त बांधता है, चारों गतियों से संयुक्त, बराबर। अब यहाँ नरक गति को क्यों छोड़ा, पिनांग आप कुछ कह सकते हो इसके बारे में? अब कहते मिथ्या दृष्टि जीव इसको बांधेगा पुरुष वेद को, तो नरक गति के संयुक्त नहीं बांधेगा, ऐसा क्यों? पिनंग पिनंग को बताना है। नहीं नहीं पता। अच्छा मंदाबेन आप कह सकते हो? हाँ बहुत अच्छा। नरक गति में एकमात्र नपुसक वेद ही पाया जाता है, बराबर। तो नरक गति भले वो बांधेगा मिथ्या दृष्टि जीव, परंतु उसके सहित एकमात्र नपुसक वेद का, जब नरक गति का बंध हो रहा है उसके अलोंग विथ इट, उसके साथ साथ कौन से वेद का बंध होता है? तो नपुसक वेद का। जब तिर्यंच गति बांध रहा है तो नपुसक वेद, श्री वेद, पुरुष वेद कोई भी बांधेगा वो मिथ्या दृष्टि जीव। इसलिए लिखा सासाधन, सासाधन तो नरक गति को बांधता ही नहीं है, तो सासाधन वाला स्त्री वेद को बांधेगा या पुरुष वेद को बांधेगा? और सासाधन के आगे पुरुष वेद ही बंधेगा, परंतु गतियां कौन कौन सी बंधेगी? मनुष्य तिर्यंच हो गए तो देव गति को बांधेंगे पुरुष वेद सहित, और देव नारकी है वो मनुष्य गति सहित पुरुष वेद को बांध रहे, है ना? थोड़ा ये बार बार रिपीट करने से पक्का होगा अपना, भले उसमें कंफ्यूजन होगा, कहीं चूक भी जाए कोई बात नहीं। शंका, नरक गति के साथ पुरुष वेद क्यों नहीं बांधता? उसका समाधान, नहीं बांधता, नहीं बनता, क्योंकि नरक गति में पुरुष वेद का अत्यंताभाव होने से, अत्यंताभाव ने अत्यंत अभाव होने से, यानी वहां तो बिल्कुल उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है पुरुष वेद होने की, क्योंकि देवों में, मनुष्यों में और तिर्यंचों में ही पुरुष वेद पाया जाता है। देवों में, तिर्यंचों में, मनुष्य में ही स्त्री वेद पाया जाता है, और नपुंसक वेद देव को छोड़कर तिर्यंच, मनुष्य और नारकियों में पाया जाता है। देखो, नरक गति में पुरुष वेद का अत्यंत अभाव होने से उस गति के साथ उसका बंध प्रतिषिद्ध है। नरक गति वाले बांधते ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि नरक गति वाले मनुष्य गति का बंद करेंगे या तिर्यंच का, तो उसके साथ पुरुष वेद को बांध सकते हैं। अब कहते इसको सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि दो गतियों से संयुक्त बांधते हैं। हमने देखा था ना, तीसरे चौथे गुणस्थान वाले देव और नारकी है, वो मनुष्य गति के संयुक्त पुरुष वेद का बंद करते हैं, और तीसरे चौथे गुणस्थान वाले तिर्यंच और मनुष्य है, वे देवगति संयुक्त पुरुष वेद का बंध करते हैं, क्योंकि इनका नरक गति और तिर्यक गति के बंध का अभाव है। इनका यानी किसका? सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि, वे जीव नरक गति और तिर्यंच गति को नहीं बांधते। संयता संयत से लेकर उपरिम जीव देवगति से संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि संयता संयत से आगे तो एकमात्र देवगति का ही बंध होता है। संयता संयत में तो मनुष्य और तिर्यंच है, वो देवगति के साथ पुरुष वेद को बांध रहे हैं, और हाँ उसका उपरिम, उपरिम मैंने छठे गुणस्थान के आगे तो मनुष्य ही है, वे भी देवगति के संयुक्त पुरुष वेद को बांध रहे। कोई ऐसा जीव है कि गति ही नहीं बांध रहा है और पुरुष वेद को बांध रहा है? हाँ, कौन से हो गए? जहां देव गति के बंध की विच्छित्ति हुई है परंतु पुरुष वेद के बंध की विच्छित्ति नहीं हुई है, यानी आठवें के छठे भाग में देव गति के बंध की विच्छित्ति हुई, आठवें का सातवां भाग और नौवें का सवेद भाग, सवेद यानी वेद सहित वाला भाग, वहां तक वेद का बंध है, पुरुष वेद का बंध है, तो वहां गति नहीं बन रही है फिर भी वेद बन रहा है। और आगे के गुणस्थानों में शेष गतियों का बंध नहीं होता, शेष गुणस्थानों में चाहिए ना, वो पर क्या क्या है, वरिमा मनुष्य के अनर्थ पमत्ता दिनम अभाव था, पुरुष वेद बंध सवगुण साधि को, हाँ अनर्थ पमत्ता दिनम अभाव आदो, ये सामी की बात है, उसके ऊपर स्वामी के आगे पुरुष वेद बंधस नहीं, उसके ऊपर पहली लाइन है, पहले ने। अच्छा, यहाँ 54 पृष्ठ पर अंतिम लाइन, संजदा संजद पौड़ी उपरिमा देवगति संयुक्तम शेष गईणम तत्थ बंधा भावादो। एक मिनट, क्योंकि शेष गतियों का बंध नहीं होता आगे के गुणस्थानों में, नहीं वहां पर संजदा संजद पहुड़ी उवरिमा, उवरिमा ने ऊपर के देवगति संयुक्त बंध करते, क्योंकि शेष गयम तत्थ बंधा भावादो, शेष गतियों का बंध का वहां अभाव है, वहां यानी संयता संयत से लेकर आगे के लिखा है ना, आगे के नहीं, इसके आगे के नहीं, उन गुणस्थानों में लिखना चाहिए, उन गुणस्थानों में शेष गतियों का बंध नहीं होता, आगे के बदले उन करना तीसरी लाइन में, क्योंकि उन गुणस्थानों में शेष गतियों का बंध नहीं होता। ये यहाँ आठवें के सातवें भाग की और नवे के पहले भाग की अलग बात नहीं कि अगति संयुक्त ऐसा बंध नहीं कहा है, फिर भी हमको समझना चाहिए। नहीं ये लिखा है क्या आगे? हाँ आगे 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 है। हाँ, अपूर्व करण के सातवें सप्तम भाग, सातवां सप्तम भाग यानी सात भाग करेंगे, तो एक एक भाग यानी सप्तम भाग है ना, तो अंतिम सप्तम भाग कहो या सातवां सप्तम भाग कहो, वहां से लेकर उपरिम जीव, उपरिम यानी सवेद वाले ऊपर के अगति संयुक्त पुरुष वेद को बांधते हैं, क्योंकि वहां गति कर्म का बंध नहीं होता। ये वहां जैसा लिखा है ना वैसे ही ऊपर भी, क्योंकि वहां शेष गतियों का बंध नहीं होता, ये बात वहां थी, वहां ने उन गुणस्थानों में नहीं, उन गुणस्थानों में है ना, वहां लिखे तो ज्यादा वर्ड टू वर्ड होगा, तो गुणस्थानों में भी निकालना चाहिए फिर, वहां आगे के गुणस्थानों में के बदले नहीं, नहीं गुणस्थान शब्द ही नहीं आया वहां, वहां शेष गतियों का बंध नहीं होता। क्या उन गुणस्थानों में लिखने से वही सी बात, अर्थ तो वही भाषित होता है। देखो अभी जो हमने देखा ना सातवें सप्तम भाग और लेकर उपरिम जीव, उपरिम जीव है नवे गुणस्थान में सवेद भाग, सवेद भाग अगति संयुक्त, वहां गति कर्म का बंध नहीं होता। इसी प्रकार संज्वलन क्रोध के भी कहना चाहिए, उसमें कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं, विशेष इतना है कि मिथ्या दृष्टि उसे चार गतियों से संयुक्त बांधता है, क्रोध कर्म को, संज्वलन क्रोध की बात चल रही है, तो संज्वलन क्रोध मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में होता है कि नहीं है, उसका उदय है कि नहीं? हाँ पिनाक भाई, मिथ्या दृष्टि को हम कहते हैं अनंतानुबंधी का, अनंतानुबंधी के पेट में सारे चारों ही है, मुखिया का नाम लिया जाता है, दूसरे गुणस्थान में हम कहेंगे अप्रत्यय अनंतानुबंधी का है, तीसरे चौथे में अप्रत्याख्यानावरण का है, पर अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन तीनों का उदय भी है और बंद भी है। तो मिथ्या दृष्टि जो जीव है वो चारों गतियों सहित इसका बंद कर रहा है, क्योंकि वहां नरक गति के साथ उसके बंद होने में कोई विरोध नहीं है, वहां तो उसकी मुख्यता है ना, वहां जाने के बाद तो उदय की मुख्यता वहां क्रोध के। अब स्वामी है ने कौन से जीव इसको बांध रहे हैं उसकी बात करेंगे। पुरुष वेद के बंध के चारों गतियां वाले, गतियों वाले मिथ्या दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि स्वामी है। चौथे गुणस्थान तक तो चारों गतियां पाई जाती है, इसलिए चारों गति के जीव पुरुष वेद को बांध सकते हैं। अब संयता संयत जब स्वामी कहेंगे तो कितने गतियों वाले हो गए वहां? दो गतियां वाले, कौन से दो? तिरंच और मनुष्य। तो दो गतियों वाले संयता संयत स्वामी है, क्योंकि देव व नरक गति में संयता संयतों का अभाव है। ऊपर के जीव मनुष्य गति के ही स्वामी है, क्योंकि दूसरी गतियों में प्रमत्त संयता आदि गुणस्थानों का अभाव है। वो बराबर करना। पुरुष वेद का बंध, अभी वो सादी है क्या अनादि है उसकी बात करेंगे। पुरुष वेद का बंध सब गुणस्थानों में सादिक व अध्रुव है, क्योंकि वहाँ प्रथम और द्वितीय गुण प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंध पाया जाता है। गुणस्थान में चाहिए ना, एक क्या लिखा है, पुरुष वेद बंधो सव गुण ठानेसु सादिगो अद्वो परिवख पयडीनम बंधुव लंबादो। वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंध पाया जाता है, कहाँ तक होगा, तो पहले और दूसरे गुणस्थान में। तो वहां जो लिखा ना, वहां प्रथम और द्वितीय गुण लिखा है, तो गुणस्थान में ये मूल पाठ में नहीं है, फिर भी वो हमें समझाने के लिए उन्होंने लिखा है। तो गुण के आगे स्थान में लिखना, गुण स्थान में ये शब्द एक है। वहां का अर्थ क्या है, प्रथम और द्वितीय गुण स्थान में प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंध पाया जाता है। अब मुझे बताना, पहला चांस बताने के लिए पिनांग का, ये वहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृति कौन सी है। पुरुष वेद के लिए मिथ्यात्व गुणस्थान में प्रतिपक्ष प्रकृतियां कौन कौन सी है। हाँ, ऑप्शन है। पुरुष वेद नहीं बंधेगा तो वहां कौन सा बंधेगा, मिथ्यात्व गुणस्थान की बात। तीन में से एक, यानी उसके लिए प्रतिपक्ष कौन से है, स्त्री वेद और नपुसक वेद, उसी जाति की चाहिए ना। पुरुष वेद के लिए हम ज्ञानावरण को प्रतिपक्ष नहीं कहेंगे, ख्याल आता है, या अनंतानुबंधी को प्रतिपक्ष नहीं कहेंगे। पुरुष वेद के लिए प्रतिपक्ष कौन है, अन्य वेद। तो पहले गुणस्थान में प्रतिपक्ष में कौन है, नपुसक वेद और स्त्री वेद, तो इसलिए वो अनादि का नहीं है। जैसे हमने देखा था मिथ्यात्व तो अनादि से बनता चला आया है, इसलिए अनादि कहा उसको। अभव्यों में तो ध्रुव रहता है इसलिए ध्रुव भी कहा, और भव्यों में जाकर वो खत्म होता है तो अध्रुव भी कहा। तो अन्य प्रकृतियों में हम चार चार प्रकार के बंध लगाते हैं। अब इसमें कौन सा लगाना है, ये पुरुष वेद की बात है। क्या अनादि से पुरुष वेद बनता चला आया है, नहीं। वो तो मिथ्यात्व गुणस्थान में तो ऑप्शनली तीन में से कुछ कोई एक बनता है। लगातार पुरुष वेद के भी हमने देखे ना, वो मार्गणा में, वो उसका भी विशिष्ट काल होगा, लगातार पुरुष 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 होगा तो भी। तो मैक्सिमम काल तो नपुसक वेद में बिताए, तो निगोद अवस्था में वो एक इंद्रिय में चौ इंद्रिय तक तो सारे नपुसक ही होते हैं, नपुसक वेदी। तो प्रतिपक्षी का अर्थ होता है ये, इसलिए वहां सादी कहा। देखिए फिर पढ़ते इसको, पुरुष वेद का बंध सब गुण स्थानों में सादिक व अध्रुव है, क्योंकि प्रथम और द्वितीय गुणस्थान में प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंध पाया जाता है। भले वो जो ऊपर के गुणस्थानों में गया है, फिर भी वो सादी ही बंध कहलाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में तो उसके प्रतिपक्षी थे ही। ऊपर उसको क्या कहेंगे, निरंतर बंध कहेंगे। तीसरे गुणस्थान के ऊपर एक पुरुष वेद ही बंधेगा, बाद में उसको वहां से आगे उसको निरंतर कह सकते हैं। अब वो आगे लिखेंगे, नियम से यानी अभी ये तो ऊपर दूसरा बंध ही नहीं है। नियम से सम्यक मिथ्या दृष्टि से लेकर उपरिम गुणस्थानों में प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध का द्वितीय गुणस्थान में विनाश देखा जाता है। दूसरे गुणस्थान में प्रतिपक्ष एकमात्र स्त्रीवेद है और उसके बंध की विच्छित्ति वहां होती है। पहले गुणस्थान में नपुसक वेद के बंध की विच्छित्ति हुई, दूसरे गुणस्थान में स्त्री वेद के बंध की विच्छित्ति हुई। अभी उसके लिए प्रतिपक्षी कोई नहीं रहा, तो अब उसका निरंतर बंध है नवे गुणस्थान के सवेद भाग तक। अब संज्वलन क्रोध की बात कर रहे हैं। संज्वलन क्रोध का मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में चारों प्रकार का बंध होता है। चारों प्रकार कहने सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव, क्योंकि वह ध्रुवबंधी प्रकृति है। ध्रुवबंदी ने अनादि से बनती चली आ गई है। हमने 47 ध्रुवबंदी प्रकृतियां देखी थी, उसमें से मिथ्यात्व एक है। सादी क्यों कहा? क्योंकि ऊपर के गुणस्थानों में जाता है फिर दोबारा मिथ्यात्व का बंध शुरू होता है, तो सादी होंगे। अध्रुव क्यों कहा? ये तो भव्यों में अभी वो तो अध्रुव है और अभव्यों की अपेक्षा ध्रुव है। उपरिम गुणस्थानों में किसके बंध की बात चल रही है? संज्वलन क्रोध के। उपरिम गुणस्थानों में तीन प्रकार का बंध होता है क्योंकि वहां ध्रुव बंध का अभाव है। क्योंकि उपरिम गुणस्थान, ये तो उपरिम गुणस्थान में आया है ना, वो जीव भव्य ही है, तभी उसके लिए ये ध्रुव बंध नहीं है, ये तो मिटने वाला है, इसलिए इसको अध्रुव कहा। तो सादी अनादि कैसे ली गई? दो होगा ना वहाँ। हाँ, निरंतर, पर शादी के साथ निरंतर कैसा लगाया? वरी में सुती भी हो। अच्छा, अनादि है ना, वो अनादि से चला आ रहा है इसलिए अनादि। ये संज्वलन क्रोध की बात चल रही, बरोबर। शादी कहेंगे क्योंकि ऊपर उपशम श्रेणी चढ़ के वहां तो आभा हो गया है और फिर दोबारा शुरू होगा, उस अपेक्षा से शादी कहेंगे, बरोबर। अब 23 नंबर सूत्र, नंबर 23। अभी हमने पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध की बात की थी। मान माय संज्वलनानम को बंधो को अबंधो, संज्वलन मान और माया का कौन बंधक और कौन अबंधक है, यह सूत्र सुगम है। देखो, हमने अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ सबको देखा था। अब ये संज्वलन की बारी चल रही है, बहुत सारी प्रकृति हम देख चुके हैं ना, तो उसका उत्तर देते हैं। मिच्छा इट्ठी पौड़ी जाव अनियट्ठी बादर सांप्राय पवित्र उवसमा खवा बंदा। अब वो कहाँ तक उसका बंध विच्छित्ति कहाँ होती है उसको भी बताएंगे। अनियट्ठी बादर अध्याये, यानी उसका अध्याय ने उसका काल में, से संखेजा भागम गंतुण बंधो वोच्छिज्यति, एदे बंधा अवशेषा अबंधा। इसका अर्थ करते हैं नीचे। मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिकरण बादर सांप्रायिक प्रविष्ट उपशमक व क्षपक तक बंधक है, ये उसके अध्वान बता दिया कहां से कहां तक। अब उसकी विच्छित्ति कौन सी पोजीशन पर होती है उसकी बात करेंगे। अनिवृत्तिकरण बादर काल के शेष, उसके भी शेष रहने पर संख्यात बहुभाग जाकर, अभी जो शेष भाग बचा है, पहले हमने देखा था ना अंतरकरण किया, उसके बाद सवेद भाग वाला, वो तो वेद का उदय मिट गया, फिर क्रोध का उदय और बंध मिट गया, तो जो शेष काल है उसका भी संख्यात बहुभाग जाने पर, शेष काल का संख्यात बहुभाग, शेष में से शेष लिया भी, बंध विच्छिन्न होता है, ये बंधक है, शेष जीव अबंधक है। देखो, इसका अर्थ करते हैं। अभी मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिकरण बादर सांप्रायिक प्रविष्ट उपशमक व क्षपक तक बंधक है, इस सूत्र वाक्य से चाहिए, क्यव से हुआ है वाक्य करना, सूत्राक्यव, सूत्रावयव है क्या? अच्छा, सॉरी, हाँ हाँ, वो व के आगे जरा क जैसा मुझे दिखा, ठीक, सूत्रावयव से, यानी सूत्र का अवयव, सूत्र में से एक भाग है ये, सूत्र में तो तीन वाक्य आए हैं, उसमें से एक वाक्य लिया है, इस सूत्रावयव से बंधा ध्वान और गतिगत बंध स्वामित्व के बिना गुणस्थानगत बंध स्वामित्व भी कहा गया है, यानी गति के अकॉर्डिंगली वो बंध स्वामित्व नहीं बताया, परंतु गुणस्थानों की अपेक्षा उसके स्वामी कौन है उसकी बात बताई। अनिवृत्ति बादर काल के शेष, उसके शेष रहने पर, संख्यात बहुभाग जाकर बंध विच्छिन्न होता है। इस सूत्रावय द्वारा बंध विनष्ट स्थान की प्ररूपणा की गई है, यानी किस स्थान पर बंध का विच्छेद होता है उसकी भी बात बताएं। संज्वलन क्रोध के विनष्ट होने पर जो शेष अनिवृत्ति बादर काल का संख्यात्वा भाग रहता है, यानी जब क्रोध संज्वलन का उदय और बंद मिट गया, तो हमने पहले देखा था वो कहाँ मिट जाता है, अनिवृत्तिकरण का संख्यात भाग बहुभाग बीत जाता है तब। तो यानी क्रोध का उदय नष्ट होने पर या बंध नष्ट होने पर अभी संख्यात्वा भाग बचा है, उसका संख्यात बहुभाग लेना है। हाँ, वो मान की बात है। तो जो संख्यात्वा भाग रहता है उसके संख्यात खंड करने पर, मान लेते हम 10 खंड करें तो बहुभाग यानी 9 खंड लेना उसमें से, उनमें बहुभागों को बिताकर एक भाग शेष रहने पर संज्वलन मान का बंध विच्छेद होता है। यहाँ भले उदय मान माया लोभ किसी का भी क्यों न हो, बंध मान माया लोभ का चल रहा है, इसके आगे मान का बंध रुक जाएगा, माया लोभ का रहेगा। अभी जो एक खंड बचा है ना, मान और माया दोनों को एक साथ लिया था समझाने के लिए, एक खंड के यानी पुनः एक खंड के संख्यात खंड करने पर, अभी हमने 10 में से 9 भाग तो गए जाने के बाद मान का बंध रुक गया, एक रहा, एक के फिर और 10 भाग करो, उसमें से 9 चले जाएंगे तो माया का भी बंध रुक जाएगा। तो एक खंड के संख्यात खंड करने पर उनमें बहुत खंडों को बिताकर एक खंड शेष रहने पर संज्वलन माया का बंध विच्छेद होता है। शंका, यह कैसे जाना जाता है? उसका समाधान, शेष उसके भी शेष रहने पर संख्यात बहुभाग जाकर, सूत्र में ही लिखा ना दो बार, वो शेष का भी शेष भाग। इस विपसा अर्थात दो बार निर्देश से उक्त प्रकार दोनों प्रकृतियों का विच्छेद काल जाना जाता है। फिर शंका, कषाय प्रावृत के सूत्र से तो यह सूत्र विरोध को प्राप्त होगा? उसका समाधान, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं कि सचमुच में कषाय प्रावृत के सूत्र से यह सूत्र विरुद्ध है, परंतु यहाँ एकांत ग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है या वही सत्य है ऐसा श्रुत केवली अथवा प्रत्यक्ष ज्ञानियों के बिना निश्चय कराने पर मिथ्यात्व का प्रसंग होगा। ये कौन सा ठीक है, वो हम खुद उसका निर्णय नहीं कर सकते, हमें तो दो उपदेश प्राप्त है तो दोनों को कथन करना चाहिए। इसलिए आचार्यों ने भी वो हमेशा कहा है कि कषाय प्रावृत में ऐसा कहा है, महाकर्म प्रकृति प्रावृत में ऐसा कहा है, या यदि ऋषभ आचार्य, ये विच्छित्ति के संबंध में भी हमने देखा था ना, मिथ्यात्व और साधन के बारे में, वहाँ भी उदय की विच्छित्ति के बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, परंतु दोनों को रखते हैं वहाँ। उसका निर्णय करने वाले हम केवल ज्ञानी नहीं है, ना ही वो श्रुत केवली है। शंका, सूत्रों में विरोध कैसे हो सकता है? ये उन्होंने दौलाकार ने स्वयं बताया कि सूत्र में तो विरोध होगा प्राप्त, क्योंकि ये तो अलग बात है। उसका समाधान, शंकाकार ने क्या पूछा, जो सूत्र है उसमें विरोध कैसे पॉसिबल कैसे है? तो यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि अल्पश्रुत के धारक आचार्यों के परतंत्र सूत्र व उपसंहारों के विरोध की संभावना देखी जाती है। ये अल्पश्रुत के धारी आचार्यों ने जो सूत्रों की रचना की है वो उनके अधीन है ना ये सूत्र, और उनके जो उपसंहार है उसके विरोध की संभावना देखी थी। उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसमें भी विरोध हो सकता है बुद्धि की हीनता के कारण। हाँ, वो तो बात यहाँ लिखी नहीं उन्होंने, यानी ये संख्यात बहुभाग इसी जो बातें की है उसके साथ कोई विरोध है? देखो फिर शंका, उपसंहार किए गए वचनों में सूत्रपना कैसे उचित है? कहते हैं जो मूल सूत्र तो नहीं है, परंतु उपसंहार रूप जो है, एक्सप्लेनेटरी जो कुछ लिखा है आचार्य ने, उसको तो सूत्र नहीं कह सकते हम। समाधान, यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि अलिंजर यानी घट विशेष, विशिष्ट घट, जो विशिष्ट आकार वाला कोई घट होगा, घट, घटी, शराव व उदंचन आदि में स्थित अमृत सागर के जल में भी अमृतत्व पाया ही जाता है। क्या कहते हैं अपनी भाषा में कहो तो, अमृत भर के लाया है अमृत सागर से, और किसी ने कटोरी में रखा, किसी ने ग्लास में रखा, किसी ने वो बड़ी बाटली में रखा, किसी ने और कोई ऐसा बर्तन है, घट है, कलश है, उसमें रखा, तो उसमें भी वो जल में अमृतत्व पाया जाता है। इसलिए उपसंहार रूप जो कोई वचन है उसमें भी सूत्रपना पाया जाता है। अब इस सूत्र के द्वारा सूचित अर्थों की प्ररूपणा करते हैं, वह इस प्रकार है। अर्थों की प्ररूपणा ने अनेक अलग अलग प्रश्नों के उत्तर अभी इसमें मिलेंगे। क्या बंद पहले मिटता है कि उदय पहले मिटता है, ये बात कहेंगे। ये किसकी बात चल रही थी? हाँ, मान और माया, संज्वलन मान और माया के। तो कहते हैं इन दोनों प्रकृतियों का बंद और उदय दोनों एक साथ विच्छिन्न होते हैं, यानी मान के लिए और माया के लिए अलग अलग। मान का उदय और बंद एक साथ मिटता है, और माया का उदय और बंद एक साथ मिटता है, क्योंकि इनके उदय के नष्ट होने पर इनका बंधन नहीं पाया जाता। पहले तो उदय में तीन में से कोई एक हो सकता था, मान या माया या लोभ, और बनते भी मान माया लोभ थे। इसके आगे मान का ना उदय होगा ना बंद होगा, इसलिए मान का उदय भी मिट गया है, उसी पोजीशन मान का बंद भी मिट गया। और उदय काल के क्षय से होने वाला उदय का विनाश यहां विवक्षित नहीं है, क्योंकि इनकी सत्ता का उपशम होने से या इनकी सत्ता का क्षय होने से उत्पन्न उदया भाव का यहाँ अधिकार है। क्या बात कर रहे हैं? अभी तक जो मिथ्यात्व गुणस्थान में या नीचे के गुणस्थानों में क्या होता था, प्रत्येक कषाय का काल अधिक नहीं हो सकता, अंतर्मूर्त हो सकता है। क्रोध, मान, माया, लोभ किसी का भी उदय होता था और चारों ही बनते थे, तो हम मान की पोजिशन लेते थे, मान का उदय चल रहा था, तो मान के उदय का काल कितना है? अंतर्मूर्त। उसके बाद वो निश्चित रूप से अन्य कषाय का उदय हो जाएगा, यानी उसका उदय काल अंतर्मूर्त से बड़ा नहीं हो सकता। तो उदय काल के समाप्त होने से उदय मिट गया है। यहाँ जो बात कर रही उदय का विनाश की, वो उदय काल के समाप्त होने के कारण अन्य का उदय नहीं चल रहा है। ये उदय क्यों मिट गया? क्योंकि या तो उपशमित हुए है या क्षपक श्रेणी वाले का क्षय हो चुका है, इसलिए इसके आगे उसका उदय ही नहीं हो सकता। ये वाक्य को फिर पढ़ेंगे। देखो तीसरी लाइन में, और उदय काल के क्षय से होने वाला उदय का विनाश यहाँ विवक्षित नहीं है। यहाँ जो उदय मिट गया ऐसा कहा, वो उदय काल समाप्त हुआ, उसका अंतर्मूर्त पूर्ण हुआ, इसलिए अन्य क्रोध बदलकर मान, मान बदलकर माया या लोभ ऐसा उदय शुरू, उसकी बात यहाँ नहीं है। तो यहाँ उदय का विनाश हुआ उसका अर्थ क्या है? क्योंकि इनकी सत्ता का उपशम होने से, सत्ता में जो पड़े हुए मान के कषाय या तो वो पूर्ण रूप से उपशमित हुए हैं इसलिए उदय में नहीं आ रहे, या क्षपक श्रेणी में क्या होगा, वो तो उसका क्षय हो गया इसलिए वो उदय में नहीं आ रहे, या इनकी सत्ता का क्षय होने से, सत्ता यानी सत्ता में जो पड़े हैं कर्म, उसकी बात है, क्षय होने से उत्पन्न यानी क्षय होने के कारण उदय का अभाव उत्पन्न हुआ है, यानी इसलिए उसका उदय नहीं हो रहा, उसका यहाँ अधिकार है। इन दोनों प्रकृतियों का स्वोदय परोदय से बंध होता है, यानी मान का जो बंध हो रहा है उसमें मान का भी उदय हो सकता है, माया या लोभ का भी उदय हो सकता है, इसलिए स्वोदय से भी बनती है और परोदय से भी बनती है, क्योंकि निरंतर बंधी और शांतर उदय वाली प्रकृति, क्या कह रहे हैं ये निरंतर बंदी है ना, हर समय बंद रही है। हमने तो देखा तो संज्वलन मान वो तो पहले से ध्रुव बंदी प्रकृतियां है, वो तो निरंतर बंदी है, परंतु उदय ऑप्शनल है, इसलिए उदय में सांतर कहा। उदय क्रोध मान माया लोभ किसी का उदय होता था अभी तक, परंतु बंध तो निरंतर चल रहा था। निरंतर बंदी और सांतर उदय वाली प्रकृतियों के स्वोदय से ही बंद होने का विरोध है। यानी कोई कहेगा वो स्वोदय से ही बनती है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि उदय तो क्रोध मान माया या लोभ का होता था और बंद सबका होता था। यानी किसी भी का उदय क्यों ना हो, स्वोदय हो या परोदय, अकेले स्वोदय से ही बनती है ऐसा नहीं कह सकते। ख्याल है ना इसको क्या कहना है? देखो तो स्वोदय से ही बंद होता है ऐसा मानेंगे तो वो ठीक नहीं है। स्वोदय से भी बंद होता है और परोदय से भी होता है। ये निरंतर बंदी प्रकृतियां हैं क्योंकि वे ध्रुव बंदी प्रकृतियों के साथ आती है, साथ आती है ना, उसमें ये इंक्लूडेड है। ध्रुव बंदी जो हमने 47 प्रकृतियां देखी है उसमें संज्वलन क्रोध मान माया लोभ को भी हमने देखा था, मिथ्यात्व और 16 कषाय को एक साथ देखा था। अब प्रत्यय कौन कौन से है? मिथ्या दृष्टि से लेकर मूल उत्तर व नाना एवं एक समय संबंधी भेदों से भिन्न, क्या कहते, कौन कौन से भेद देखे? मूल प्रत्यय, उत्तर प्रत्यय। अब उत्तर प्रत्ययों में नाना समयों में तो सभी प्रत्यय पॉसिबल है और एक समय में थोड़े ही होंगे उसमें से। जैसे मिथ्या तो गुणस्थान में 55 प्रत्यय हमने देखा था नाना समय में, और एक समय में 10 हो गए मिनिमम और अधिक से अधिक 18 हो सकते हैं। इन भेदों से भिन्न जो प्रत्यय पूर्व में कहे जा चुके हैं उन गुणस्थानों से विशिष्ट जीव उन्हीं प्रत्ययों से इन प्रकृतियों को बांधते हैं, क्योंकि बंध के कारण तो गुणस्थान के अनुसार हमने देखे थे। क्योंकि अन्य प्रत्ययों का अभाव है, कौन से गुणस्थान में कौन कौन से प्रत्यय होते हैं उसकी हमने बहुत विस्तार से चर्चा की ही थी। अथवा अभी अथवा कहकर दूसरी अपेक्षा बता रहे, इन प्रकृतियों का संज्वलन उदय विशेष ही प्रत्यय है। तो संज्वलन कषाय क्यों बनते हैं? क्योंकि संज्वलन कषाय का उदय है। अथवा कहकर उसी को उसका कारण बताया, संज्वलन के उदय में ही संज्वलन का बंध होगा। तो संज्वलन का उदय कहाँ पाया जाता है बोलो? हाँ, एक से लेना, हाँ मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर। पहले हम कहते तो चारों कषाय चौकड़ी ना, उसमें संज्वलन भी है। जब हम कहते क्रोध का उदय हो रहा है तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संज्वलन क्रोध, चार प्रकार के क्रोध का उदय होता है। और बंधेंगे 16 प्रकार सब क्रोध मान माया लोग, क्योंकि उसके बिना इनका बंध नहीं पाया जाता। हमने देखा अविना भाव है उसके साथ, उसके बिना नहीं पाए जाते और उसके होने पर ये होता ही है। अब किन गतियों से संयुक्त इसको बांध रहा है? संज्वलन मान माया की बात चलेगी। मिथ्या दृष्टि इन दोनों प्रकृतियों को चार गतियों से संयुक्त बांधता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान वाला तो चारों गतियों को बांधता है और उसको तो 16 कषाय तो बनते ही बनते हैं, ध्रुवबंदी है नहीं ये? क्योंकि मिथ्यात्व के बिना सब गतियों का बंध के साथ विरोध नहीं पाया जाता। तस्स सव गई बंधे ही विरोहा भावा दो। यानी मिथ्या तो क्यों नहीं, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में तो सब गतियों का बंध होता है, ऊपर ऊपर जो कोई दूसरे गुणस्थान में तीन ही गतियों के संयुक्त बांधता है वगैरह वगैरह बात। ये भाषांतर में कोई जरा गड़बड़ी लगती है, ऊपर लिखा ना तस्स सव गई बंधे ही विरोहा भावादो, विरोध का अभाव है। यानी सब गतियों के बंध के साथ विरोध का अभाव है, किसका? संज्वलन मान माया के बंध का। इन दोनों सासादन सम्य दृष्टि इन दोनों को चाहिए, दोनों प्रकृतियों को, इन दोनों प्रकृतियों को सासादन समय दृष्टि तीन गतियों से संयुक्त बांधता है, क्योंकि उसके नरक गति के बंद के साथ विरोध है। सासादन वाला नरक गति को बांधता ही नहीं। इन दोनों को सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत के ऊपर बिंदी सम्यक दृष्टि दो गतियों से संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि उनका नरक व तीर्य गति के साथ बंद होने में विरोध है। उनके ये गति बनती नहीं है, इसलिए उसके साथ इसका बंध नहीं होता। उपरिम जीव इन दोनों को देव गति से संयुक्त या गति संयोग से रहित होकर बांधते हैं। गति संयोग से रहित कब कहेंगे? जब देव गति के बंध की विच्छित्ति हो जाएगी आठवें के छठे भाग में, उसके बाद वो गति से रहित बांधेगा, किसी गति के साथ नहीं बांधेगा, क्योंकि उनका शेष गतियों के साथ बंद होने में विरोध है। अब कौन से गति वाले इसको बांधते हैं, तो उसके स्वामी कौन है उसकी बात करेंगे। पहले कौन से गति के संयुक्त इसका बंद होता था उसकी बात की, अब उसको बांधने वाले जीव कौन से गति के हैं। मिथ्या दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि, चारों गतियों वाले, क्योंकि चौथे गुणस्थान तक चारों गतियां हैं और वे सारे ही संज्वलन मान माया का बंद कर रहे हैं। दो गतियों वाले संयता संयत मनुष्य और तिर्यंच, शेष गुणस्थानवर्ती मनुष्य गति वाले स्वामी हैं। बंधाध्वान और बंध विच्छित्ति स्थान चूंकि सूत्र प्रतिपादित है अतः सुगम है। अतः है वो अतः करना, अतः नहीं इसलिए सुगम है। मिथ्या दृष्टि के इनके चारों प्रकार का बंध होते हैं, चारों यानी सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव, क्योंकि वे ध्रुवबंधी प्रकृतियां। हमने देखे ना ध्रुवबंधी प्रकृतियों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव चार प्रकार का बंध पाया जाता है। शेष जीवों के ध्रुवबंध का अभाव होने से तीन प्रकार का ही बंध होता है। ऊपर के गुणस्थानों में वो ध्रुवबंध नहीं है अभी, क्योंकि वो भव्य है जीव और वो बंध को नष्ट करने वाले हैं। अब लोभ की बात कर रहे हैं। लोभ संजलनस्य को बंधो को अबंधो, संज्वलन लोभ का कौन बंधक और कौन अबंधक है, यह सूत्र सुगम है। मिच्छा इट्ठी पहुड़ी जाव अनियट्ठी बादर सांप्राय पविठ उवसमा खवा बंदा, अनियट्ठी बादर धाये चरम समयम गंतुन बंधो वो छिज्जति, एदे बंधा अवशेषा अबंधा, यानी नवे गुणस्थान के अंतिम समय तक किसका बंध है। तो पहले बंध मिटेगा कि पहले उदय मिटेगा? संज्वलन लोभ का, हाँ नहीं नहीं वो बादल सूक्ष्म की बात नहीं करना। संज्वलन लोभ का बंध पहले मिटेगा कि उदय मिटेगा पहले? अभी हमने क्या देखा, जहाँ संज्वलन क्रोध का उदय है वहां तक ही बंध है, मान का उदय है वहां तक भी उसका बंध भी है, माया का भी उदय और बंध एक साथ विच्छिन्न होता है। तो लोभ के बारे में क्या हम ऐसा कह सकेंगे कि नहीं कह सकेंगे? अरविंद भाई क्या कहते हैं? हाँ साथ में जाएंगे, साथ में जाएंगे। आपके क्या कहे? हाँ नहीं नहीं बादल सूक्ष्म की बात नहीं है, बंध और उदय की बात है। हाँ तो दसवें में सूक्ष्म लोभ का उदय है परंतु बंध नहीं है, है ना? तो बंध कहाँ तक है? नौवे के अंत तक। और लोभ का उदय कहाँ तक है? दसवें तक। परंतु वहाँ बंध क्यों नहीं है? क्योंकि उसका अनुभाग इतना मंद हो गया है, वहाँ लोभ का उदय होते हुए भी लोभ का बंध नहीं है। तो यहाँ कहते हैं अनिवृत्ति बादर काल के अंतिम समय को प्राप्त होकर, ये पढ़ा क्या मैंने नीचे क्या ऊपर का पढ़ रही थी? ऊपर का बंधो ओछी जति एदे बंधा अवशेषा बंधा। अभी फिर इसका अर्थ नीचे करती हूँ। मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति बादर सांप्रायिक प्रविष्ट उपशम और क्षपक तक बंधक है। अनिवृत्ति बादर काल के अंतिम समय को प्राप्त होकर बंध विच्छिन्न होता है। ये बंधक है, शेष जीव अबंधक है। शेष यानी दसवें ग्यारहवें बारहवें तेरहवें वाले वो चौदहवें वाले तो सभी अबंधक ही होते। मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति बादर सांप्रायिक प्रविष्ट उपशमक और क्षपक तक बंधक है। यह सूत्रांश द्वारा सूत्र का अंश है ना, सूत्र में तीन वाक्य है, उसमें से ये एक वाक्य उसका अवयव कहा या अंश कहा, बंधाध्वान और गुणस्थानगत बंध स्वामित्व की प्ररूपना की गई है। गुणस्थानों की अपेक्षा बंध के स्वामी कहा, गति की अपेक्षा स्वामी नहीं कहे है ना, और बंध अध्वान यानी लिमिट उसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक ये भी बताया। अब दूसरा जो सूत्रांश है, अनिवृत्ति बादर काल के अंतिम समय को प्राप्त होकर बंध विच्छिन्न होता है। इस सूत्रांश द्वारा बंध विच्छित्ति स्थान का निरूपण किया गया है। थोड़े थोड़े बताए ना, क्या क्या बताए उसको कह रहे, ये देशामर्शक क्यों है, और फिर जो नहीं कहा है उसको खोलकर बताएंगे। चूंकि सूत्र द्वारा इन्हीं तीन अर्थों की प्ररूपणा की गई है, अतएव यह देशामर्शक सूत्र है। इस कारण इसके द्वारा सूचित अर्थों का निरूपण करते हैं वह इस प्रकार है। यानी क्या, बंध पहले मिटता है कि उदय पहले मिटता है, स्वोदय से होता है कि परोदय से होता है, निरंतर है कि सांतर है, सादी अनादि ध्रुव है कि नहीं है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर आप कहेंगे। गति संयुक्त है, कौन से गति स्वामी गति वाले स्वामी है, उसकी बात करेंगे। संज्वलन लोभ का बंध पूर्व में विच्छिन्न होता है पश्चात उदय, क्योंकि उदय दसवें तक चलता है ना, क्योंकि अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में बंध के विच्छिन्न हो जाने पर सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समय में उदय का विच्छेद पाया जाता है। वो सूक्ष्म सांप्राय उसका नाम ही इसलिए पड़ा कि सूक्ष्म लोभ का वहां उदय है। संज्वलन लोभ का स्वोदय परोदय से बंध होता है। जब अंतिम ये भाग आया ना, उसका विच्छित्ति का समय, जहां माया के बंध की विच्छित्ति हुई है, उसके बाद काहे से बंधेगा लोभ, स्वोदय से बंधेगा। परंतु वहां तक स्वोदय से भी बंधेगा और परोदय से भी बंधेगा। देखो, संज्वलन लोभ का स्वोदय परोदय से बंध होता है, क्योंकि संज्वलन लोभ के बंध का ध्रुवोदय पने का अभाव है। वो पना उसके साथ चाहिए, ध्रुवोदय पना है ने बंध का, बंध का क्यों लिखा, संज्वलन लोभ के ध्रुवोदय का अभाव चाहिए। ऊपर क्या लिखा है, सो लोभ संजलन से, दूसरी लाइन, सोदय परोदय ही बंधो ध्रुवोदयता भावादो। संज्वलन लोभ के ध्रुवोदय पने का अभाव चाहिए, बंध का शब्द बीच में नहीं चाहिए। बंध तो ध्रुवबंदी है और उदय तो ध्रुवोदय नहीं है, क्योंकि चार में से किसी एक का उदय चलता है, क्रोध या मान या माया या लोभ, बराबर है ना। वो बंध शब्द ऊपर नहीं है उसमें, ध्रुवोदयता भावादो। क्या क्या, हाँ, आपका प्रश्न है अबुद्धिपूर्वक जो राग है दसवें के अंत तक ही होगा क्या, बराबर, हाँ, क्योंकि वहीं तक उसका है ना सूक्ष्म अंश, वहां तक ही है। उसके आगे पूर्ण वितराग है, अर्यंत जैसे, भले वो ग्यारहवा गुणस्थान हो या बारहवा हो, सूक्ष्म अंश भी नहीं है कषाय का, ना ही उदय है और ना ही उसका जीव का भाव है। वैसे ऐसा नहीं कि वहां उदय होता रहे और जीव यहाँ वितराग हुआ है, ऐसी बात नहीं होती। उदय क्या बताता है, जीव के भावों को बताता है। वहां उदय नहीं है वो क्या बताता है, वहां जीव पूर्ण वितराग है ये बताता है। श्रेणी में तो सारे अबुद्धिपूर्वक के ही उपयोग, अबुद्धिपूर्वक के राग है, उपयोग नहीं, राग बुद्धिपूर्वक का है। ये बंध का जो शब्द है ना वो बीच में से निकालना, संजोलन लोभ के ध्रुवोदय पने का अभाव है। बंध उसका निरंतर है, संजोलन लोभ का बंध निरंतर है। क्यों? हाँ, वो ध्रुवबंधी प्रकृति है ना। हाँ, ध्रुवबंधी प्रकृति निरंतर बनती है। हाँ, क्योंकि वह ध्रुवबंध प्रकृति है। ध्रुवबंध कहो या ध्रुवबंधी कहो, एक ही बात। अब प्रत्यय कौन कौन से हो गए? तो जो हमने गुणस्थानों में जो प्रत्यय देखे थे वही हो गए। प्रत्ययों की प्ररूपणा संज्वलन मान के समान है। गति संयुक्तता, स्वामित्व, अध्वान और बंध विच्छित्ति स्थान की प्ररूपणाएं सुगम है। गति संयुक्त कौन से गति संयुक्त है? तो पहले गुणस्थान में चारों गति संयुक्त है, दूसरे में नरक गति के बिना तीन है, तीसरे चौथे वाले तो नहीं नहीं हाँ देवगति मनुष्य गति, कौन से गति का बंध कर रहा है उसकी बात है ना। और पांचवे वाले देवगति का कहाँ तक? आठवें तक, और उसके बाद अगति वाला। उसके स्वामित्व कौन कौन है? चौथे गुणस्थान तक तो चारों गति के स्वामी हैं, पांचवे वाले दो गति के और छठे के ऊपर मनुष्य है। अध्वान यानी कहाँ से कहाँ तक, वो तो बता दिया। बंध विच्छित्ति स्थान भी बताया, नौवे गुणस्थान के अंतिम समय। अब ये साधे अनादि की बात करेंगे। मिथ्या दृष्टि के चारों प्रकार का बंध होता है क्योंकि वह ध्रुवबंधी प्रकृति है। ध्रुवबंधी प्रकृतियों के बारे में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान वाले को सादि अनादि ध्रुव अध्रुव चारों का बंध होता है, चारों प्रकार का हो सकता है। शेष जीवों के तीन प्रकार का, शेष यानी दूसरे गुणस्थान के ऊपर यानी वे भव्य ही है तो उसमें वो ध्रुवबंध अभी नहीं रहेगा, अध्रुव हो जाएगा, क्योंकि शेष गुणस्थानों में ध्रुवबंध पने का अभाव है। अब ये तो हो गई संज्वलन क्रोध मान माया लोभ की बात हो गई। हस्सर अधि भय दुगुण छाणम को बंधो को अबंधो, हास्य रति भय और जुगुप्सा। हाँ, आठवें गुणस्थान तो ये तो ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं। हाँ, और उदय कहाँ तक है? आठवें तक ही है। वैसे अरति शोक का भी उदय आठवें तक है। किसको? हाँ, आपका प्रश्न है अरति शोक को क्यों नहीं लिया इसके साथ। हाँ, उसके बंदे की विच्छित्ति छठे में होती है और हास्य रति भय जुगुप्सा के बंदे की विच्छित्ति आठवें में होती है। जिनकी एक साथ बंदे विच्छित्ति होती है उसको एक साथ लिया यहाँ पर। उदय की विच्छित्ति का ग्रुप अलग है क्या? नहीं ना, नीचे अर्थ देखो उसका। हास्य रति भय और जुगुप्सा, वो मुंह दिख रहा है, जुगुप्सा करना उसको। प्रकृतियों का कौन बंधक है और कौन अबंधक है, यह सूत्र सुगम है। मिच्छा इट्ठी पहुड़ी यानी वो कहां से कहां तक ये बता रहे अभी। जाव अपूर्वकरण पवित्ठ उवसमा खवा बंधा, ये तो अपूर्वकरण इतनी बात की, अब उसका कहां उसकी विच्छित्ति होती वो भी बताएंगे। अंत में करेंगे, अच्छा आप कहते तो करेंगे। अपूर्वकरण धाये जरिम समयम गंतुण बंधो वोच्छिज्यति, अंतिम समय जाने के बाद ने वहां तक बंध है, बाद में उसका बंध नहीं है। एदे बंधा अवशेषा अबंधा, मिथ्या दृष्टि से लेकर अपूर्वकरण प्रविष्ट उपशमक और क्षपक तक बंधक है। अपूर्वकरण काल के अंतिम समय को प्राप्त होकर बंध विच्छिन्न होता है, ये बंधक है। शेष जीव अबंधक है। इस सूत्र के द्वारा बंधाद्वान यानी कहां से कहां तक ये सीमा बताई। गुणस्थानगत बंध स्वामित्व यानी गुणस्थानों की अपेक्षा इसको बंध करने वाले कौन कौन है उसकी बात। और बंध विच्छित्ति स्थान की प्ररूपना किए, कौन से पॉइंट पर, किस स्थान में, तो अंतिम समय में कहा ना, आठवें के अंतिम समय में। इसीलिए इसे देशामर्शक सूत्र समझना चाहिए, क्योंकि इसमें ये इतनी ही बातें बताइए, बातें उसके प्रत्यय कौन से है, वो तो कौन से गति संयुक्त बंद करता है, सादी अनादि निरंतर है नहीं है, ये सब बातें इसमें से निकाल कर बताएंगे। अन्यथा यहाँ शेष अर्थों की संभावना नहीं है, यदि देशामर्शक नहीं समझेंगे तो उसमें से अन्य अर्थ नहीं निकल सकते, उसकी संभावना नहीं, उनकी पॉसिबिलिटी नहीं होती, परंतु वो इसमें से निकल सकते हैं, इसलिए इस सूत्र को देशामर्शक हम कह सकते हैं। अतएव इसके द्वारा सूचित अर्थों की प्ररूपणा करते हैं। अब पहला प्रश्न पूछेंगे, इसका बंद पहले विच्छिन्न होता है कि उदय, आप क्या कहते हैं? याद नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो आठवें गुणस्थान सातवें, आठवें गुणस्थान में उदय की विच्छित्ति किसकी है? हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, सबकी। उसमें से हम हास्य रति भय जुगुप्सा की बात कर रहे हैं, तेने उसका बंध भी और उदय भी एक साथ मिटता है। देखो, हास्य रति भय और जुगुप्सा, इनका बंध और उदय दोनों साथ विच्छिन्न होते हैं, क्योंकि अपूर्वकरण के अंतिम समय में उक्त चारों प्रकृतियों के बंध और उदय दोनों की विच्छित्ति पाई जाती है। उसके साथ साथ अरति शोक की भी उदय की विच्छित्ति होती है, परंतु हम यहाँ कंसर्न है चार के बारे में। उनका बंध और उदय कहाँ तक है? अपूर्वकरण के अंत समय तक। इनका बंध अभी स्वोदय से होता है कि परोदय से होता है? दोनों से होता है। हास्य रति का बंध हास्य रति के उदय में भी हो सकता है और शोक रति के उदय में भी हो सकता है। तो इनका बंध स्वोदय परोदय से होता है, क्योंकि ये ध्रुवोदयी प्रकृतियां नहीं है। ऑप्शन है ना, हमने देखा था उदय के कुट में, या तो हास्य रति का उदय होगा या शोक रति का होगा, तो उदय ध्रुव नहीं है, तो इसको हम परोदय से भी उसका बंध होता है, स्वोदय से भी होता है, ऐसा कहेंगे। अतः इनका परोदय से भी बंध होने में कोई विरोध नहीं, भी लगाया, यानी स्वोदय से भी होता है और परोदय से भी होता है। भय और जुगुप्सा का सब गुणस्थानों में निरंतर बंध है। देखो, ये हमने ध्रुवबंधी प्रकृतियों में इसका देखा था, 1919 के हिसाब किया था ना 47 में, तो उसमें मिथ्यात्व सोलाप कषाय और भय जुगुप्सा को लिया था, क्योंकि इसका उदय ध्रुव नहीं है। कभी कभी तो दोनों का ही उदय नहीं है, कभी तो अकेले भय का उदय है और कभी अकेले जुगुप्सा का उदय है, कभी दोनों का ही उदय है। उदय में सब वेरिएशंस है, फिर भी बंध निरंतर है, सब गुणस्थानों में निरंतर बंध है, क्योंकि वे ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं। हास्य रति को ध्रुवबंधी नहीं कहा, क्योंकि वे प्रतिपक्ष वाली है। मिथ्यात्व सोलह कषाय और भय जुगुप्सा वो ध्रुवबंधी है, उनमें कोई इनमें से ये बंधेगी या वो बंधेगी ऐसा कोई नहीं, सबके सब बंधेगी हर समय, जहाँ तक उसकी विच्छित्ति नहीं होती वहाँ तक सबकी सब बंधेगी। तो ये भय और जुगुप्सा हर समय निरंतर बनती चली आ रही, अनादि से बंधेगी, आठवें गुणस्थान के अंत समय तक बंधेगी। अब हास्य रति के बारे में, हास्य और रति का मिथ्यादृष्टि से लेकर प्रमत्त संयत तक सांतर बंध है, ऐसा क्यों कहा? हाँ, क्योंकि सांतर वो ऑप्शनल है ना, कभी हास्य रति बंधेगी तो कभी शोक रति बंधेगी, वो युगल में प्रतिपक्ष बताया, तो प्रतिपक्षी प्रकृतियों का बंध सांतर होता है, अंतर पड़ता है बीच में। जब शोक रति का बंध हो रहा है तब हास्य रति का बंध नहीं हो रहा है, इसलिए उसको स अंतर, अंतर सहित वाला कहा, क्योंकि यहाँ प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंध पाया जाता है। दोनों का प्रमत्त संयत से ऊपर निरंतर बंध है। अभी जो छठे गुणस्थान में अरति और शोक के बंध की विच्छित्ति हुई, तो सातवें के आगे वो बंधेगी ही नहीं, तो अभी हास्य और रति के लिए प्रतिपक्ष कोई नहीं रहा, तो हर समय हास्य रति का ही बंध होता है, किसके लिए? सातवें और आठवें के लिए। तो वहां जाकर उनको हम निरंतर कहेंगे। तो दोनों का प्रमत्त संयत से ऊपर निरंतर बंध है, क्योंकि वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध का अभाव है। इसके प्रतिपक्षी कौन है? अभी देखे हमने, हाँ पीना, हास्य रति के प्रतिपक्षी कौन है? हास्य का प्रतिपक्षी शोक, रति के प्रतिपक्षी अरति। बरोबर। प्रत्ययों की प्ररूपणा ज्ञानावरण के समान है, यानी जो हमने पहले ही पहले सब प्ररूपणा देखी थी ना, मिथ्या तो गुणस्थान में कितने हैं, तो 55 है, दूसरे में 50 है, फिर उसमें एक समय की अपेक्षा से 10 से लेकर 18, वो प्ररूपणा वैसे ही है। चारों प्रकृतियों को अभी कौन से गतियों के संयुक्त बांधता है उसकी बात करेंगे, कि चारों प्रकृतियों को मिथ्या दृष्टि चारों गतियों से संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के इनके बंध का चारों गतियों के बंध के साथ कोई विरोध नहीं है। विशेष इतना है कि हास्य और रति को तीन गतियों से संयुक्त बांधता है। क्योंकि इनके बंध का नरक गति के बंध के साथ विरोध है। जब जब नरक गति का बंध कर रहा है तो उसके साथ अरति और शोक बनती है। हाँ, वहां तो शोक, अरति, क्रोध, ये सब भय, ये सब चलता रहता है। नरक गति जब बंध रहा है तब उसके संकलेश परिणाम है। बंध के समय भाव कैसे है? उन भावों से हास्य रति का बंध नहीं हो रहा। नरक गति में वो नहीं हंसते, वो हंसने के लिए काम फुर्सत है उनको। देशना की बात नहीं, आपका प्रश्न ऐसा है, तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है तो एक समय के लिए सभी जीवों में वो नारकिंग की मुख्यता है वहाँ उसका। अभी वो कितना, हाँ हाँ, क्या कहते हैं, निराकुलता होती है। हाँ, यानी वो तो कितने थोड़े काल के लिए। हाँ, सब जीवों को, नारकियों को भी। हाँ, एक समय भी थोड़ा काल, अल्प काल है। जैसे हम कहते हैं ये दोनों बाजू से बहुत ट्रैफिक बहता है, कभी कभी ऐसे कहते हैं अरे क्या हुआ, एकदम सन्नाटा, दोनों सहज रूप से वो ट्रैफिक बंद हुआ है, तभी तो ऐसा ख्याल में आता ना, वैसे बिल्कुल ख्याल में आए और फिर चालू हो जाए, वैसे ही है। एक समय तक वहाँ वो अशुभ प्रकृतियों के ही उदय होते हैं। हमने देखा था ना, अयश कीर्ति का भी बंध नहीं होता उसके साथ, वैसे हास्य रति का भी उसके साथ बंध नहीं होता। विशेष इतना कहकर हास्य रति लिया, क्योंकि पहले भय जुगुप्सा के साथ चारों के साथ, चारों गतियों के साथ बनते ही सका, फिर भी हास्य रति के लिए फिर दोबारा अपवाद बताया कि नरक गति के साथ भय जुगुप्सा तो बंधेगी परंतु हास्य रति का बंध नहीं होगा, शोक रति का होगा। सासादन समय दृष्टि चारों प्रकृतियों को तीन गतियों से संयुक्त बांधता है, क्योंकि वहां नरक गति का बंध नहीं रहता। उक्त प्रकृतियों को सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टि दो गतियों से संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि इन गुणस्थानों में नरक गति और तिर्यक गति के बंध का अभाव है, क्योंकि उसकी विच्छित्ति पहले ही हो चुकी है। पांचवें आदि गुणस्थान वाला जीव देव गति से संयुक्त बांधते हैं, स के ऊपर बिंदी लगाना, क्योंकि उन गुणस्थानों में अन्य गतियों का बंध नहीं होता। अब कोई बिना गति वाला भी होगा, हाँ अंतिम भाग में, क्योंकि देवगति के बंध की विच्छित्ति छठे भाग में होती है और हास्यरति भय जुगुप्सा के बंध की विच्छित्ति सातवें भाग में होती है। तो ये अंतिम जो सातवां भाग है वहाँ किसी गति का बंध नहीं है, परंतु ये हास्यरति भय जुगुप्सा का बंध है। विशेष इतना है कि अपूर्वकरण काल के अंतिम सप्तम भाग में, यानी वो सातवां भाग लास्ट वाला भाग में वर्तमान जीव, यानी वहाँ जो जीव है उसके अगति संयुक्त बांधते हैं, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि देवगति का बंधन की विच्छित्ति पहले हो जाती है छठे भाग के अंत में। अब उसके बांधने वाले कौन से गति वाले जीव है? चारों गति वाले मिथ्या दृष्टि, सासाधन समय दृष्टि, समय मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टि जीव इन चारों प्रकृतियों के बंध के स्वामी है। नारकियों के उदय भले नहीं हो, वो बंद कर रहे हो हास्यरतिक। दो गतियों वाले संयता संयत के ऊपर बिंदी इनके बंध के स्वामी है, क्योंकि देव और नारकियों में अनुवृत्तियों का अभाव है। उपरिम जीव मनुष्य ही होकर इनके बंध के स्वामी हैं, क्योंकि अन्यत्र प्रमत्तादिक गुणस्थानों का अभाव है। अब बंध अध्वान और बंध विच्छेद स्थान सुगम है, वो तो सूत्र में ही बता दिए। भय और जुगुप्सा का और बराबर करना। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में चारों प्रकार का बंध होता है, वे ध्रुव बंदी है ना प्रकृतियां, तो सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव चारों होगा, क्योंकि ये दोनों ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं। उपरिम गुणस्थानों में तीन प्रकार का बंध होता है, क्योंकि वहां इन प्रकृतियों के ध्रुवबंध का अभाव है। ये भव्य है, ऊपर के गुणस्थानों में चले गए तो अभी उसको ध्रुव नहीं रहेगा बंध। हास्य और रति का बंध सादि अध्रुव है, क्योंकि उनके वो प्रतिपक्षी प्रकृतियां पाई जाती, जैसे शांतर होने का भी जो कारण था वही वो शादी होने का भी है, क्योंकि छठे गुणस्थान तक इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंध उपलब्ध है। बाकी नया सूत्र हम कल ही ले लेंगे। ये मनुष्यायु को अलग से बताया उन्होंने। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक न